शांति, ओम शांति। बाबा क्यों आए हैं? हर बार बाबा का इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग होता है। बाबा क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं, मैं आया हूं इस समय जो सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, उस बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने आया हूं। है ना, इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। कैसे बिगड़ी हुई है तकदीर? दुख, अशांति, परेशानी, चिंताएं, भय, गरीबी, न जाने क्या क्या है संसार में, तनाव, चिंता, सब कुछ है। सुख शांति तो कोसों दूर चली गई है, क्योंकि तकदीर बिगड़ी हुई है। तो बाबा कैसे आकर के हम बच्चों की तकदीर बनाते हैं, उसके लिए श्रीमत देते हैं। अब तदबीर तो हमको ही करनी है ना, तकदीर तो बनाने की बाबा युक्तियां बताएंगे, लेकिन वो युक्तियां तो हमें धारण करनी है और अपनी तकदीर बनानी है। तो कैसे तकदीर बनाओ अपनी, आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है। हाँ, हम सबके लिए ही है, क्योंकि सब चाहेंगे कि हमारी तकदीर बन जाए, क्योंकि बिगड़ चुकी है तकदीर। कुछ भी स्थिर नहीं है इस समय, सब अस्थिर है, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए बाबा हमारी तकदीर कैसे ऊंची बनाते हैं, क्या उसके लिए श्रीमत देते हैं, वो बाबा ने आज बताया। क्योंकि गीत भी है ना, एक गीत होगा, सुना होगा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो शिव बाबा के सिवाय कोई भी हमारी बिगड़ी नहीं बना सकता है। और कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, वो आज की मुरली में कई पॉइंट्स है, जिससे हमारी तकदीर जो बिगड़ चुकी है वो फिर से बनेगी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 26/12/2025 है। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पहला काम बाबा ने हेडिंग में ही दिया है, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते, देखते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। किसी को देखते हो, किसी से बात करते हो, पहले तो उसको आत्मा देखो और फिर देखो और फिर बात करो, परंतु याद बाबा की रहे। दोनों काम साथ साथ करना है। तो मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते, देखते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को हम कौन है? नई दुनिया की स्थापना करने के निमित्त है, तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बहुत बड़ा डायरेक्शन बाबा देते हैं, क्योंकि हमको नई दुनिया बनानी है, बिगड़ी को बनाना है। अपनी भी तकदीर जो बिगड़ गई है, दुनिया की तकदीर भी बिगड़ गई है, तो इसीलिए उसके लिए बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? उत्तर, बच्चे अब तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, माना दिल हटा देनी है इस दुनिया से। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, ये भी बहुत बड़ा डायरेक्शन है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ, जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ, माना उसके विरुद्ध, श्रीमत के विरुद्ध जांच करो हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। अपने से पूछो, ये चार्ट रखो बाबा ने, या चार्ट पर भी बहुत जोर दिया है, चार्ट रखेंगे उस अपने आप को सुधारेंगे उस चार्ट के आधार पर तो जरूर तकदीर ऊंची बनेगी। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं है, गीत ना भी बजे तो भी बाबा की मुरली तो चलती है। गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं है, गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। ये बच्चों के लिए जैसे बाबा ने बनाए हैं ये गीत, बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है, तकदीर ऊंच बनानी है तो पहला काम बाप को याद करना है और दूसरा काम दैवी गुण धारण करने हैं, अपना पोता मेल देखना है तीसरा काम। जमा होता है या ना, यानी घाटा होता है वो देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है तो क्या होगा, अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि तकदीर बना रहे ना, परंतु अगर कोई खामी होगी तो घाटा पड़ जाएगा। तो अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उनको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। तुम समझाते हो हाँ हमारी इतनी ऊंची तकदीर थी, तो उसके लिए क्या समझाते हो, तो तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, फिर से इतनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं, ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो हम इतनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं, लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है, तो बाप का फरमान मिला हुआ है। क्या फरमान बाबा का मिला हुआ है कि सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ, किसी से भी दिल नहीं लगाओ। केवल व्यक्ति की बात नहीं है, वस्तु वैभव हाँ कोई भी ऐसी बातें, किसी से भी दिल मत लगाओ और दैवी गुण धारण करो। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में, पहला नंबर लो राजाई में। ऐसे न हो कि राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, हाँ प्रजा में नहीं जाना है, राजाई में नंबर वन लेना है। तो ऐसे नहीं हो कि राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी फिर नीचे चले जाओ। हाँ कल बाबा ने कहा ना, नहीं तो झाड़ू लगाने वाले हो जाएंगे सतयुग में। तो किसने मेरे से प्रश्न किया कि वहां इतनी गंदगी होगी क्या कि झाड़ू भी लगाना पड़ेगा? तो झाड़ू लगाना तो कुछ तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं लगाना पड़ेगा। भले जो यहाँ कलयुगी दुनिया में इतना कचरा उस रूप से वो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सफाई तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे न हो कि राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ, नहीं तो अपनी जांच करते रहो। ये समझानी बिगर बाप के और तो कोई दे न सके।
बाप को टीचर को याद करने से क्या होगा, क्योंकि दोनों से शिक्षा ही मिलती है, बाप से भी शिक्षा मिलती है, टीचर से भी शिक्षा मिलती है, तो दोनों को याद करने से क्या होगा, डर रहेगा हमको पिता ने क्या शिक्षा दी, टीचर ने क्या शिक्षा दी, है ना। कई बच्चे वर्णन करते ना, हमारे बाप ने ये हमको कहा था बचपन में, हमारे टीचर ने हमको ये कहा था, तो उनको याद रहता है। तो बाप को टीचर को याद करने से डर रहता है, ऐसे न हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बनेंगे। हर कोई समझता है अगर कोई पाप कर्म किया तो सजा के भागी बनेंगे। बड़े बाबा का डायरेक्शन तो अभी ही मिलता है। कौन है बड़ा बाबा? शिव बाबा का डायरेक्शन तो अभी मिलता है, जिसको श्री मत कहते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि श्री मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो अपनी जांच करनी है कहां कहां हम श्री मत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है, श्री मत के विरुद्ध तो कुछ करते नहीं है, ये अपनी जांच करनी है। जो बात अच्छी न लगे वो करनी नहीं चाहिए। अभी कैसे पता चले ये बात अच्छी है या नहीं, तो वो तो श्रीमत से ही पता चलेगी। बाबा तो हर बात की श्रीमत देते हैं, जो श्रीमत के विरुद्ध है वो तो बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो बात अच्छी न लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे का तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। आगे कहाँ समझते थे कि अच्छा क्या बुरा क्या है, हम समझते क्रोध करना तो अच्छा है, नहीं तो मानेंगे नहीं लोग, ये नहीं होगा तो ये मानेंगे नहीं, इसलिए करना पड़ता है, करना ही चाहिए, अच्छा है। तो बाबा कहते अच्छे बुरे का तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो, कैसे कर्म? सुकर्म सीखते हैं ना, श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं, बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। इतनी ऊंच तकदीर बना लेते हो, जो वहां इतने ऊंचे बन जाते हो, जो वहां तो फिर वो श्रेष्ठ कर्म करना है ये कोई संकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अकर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है वो। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है, अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। फिर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, सावधान करते हैं, समय नाजुक होता जाता है। ये बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, समय नाजुक होता जाता है, दुनिया तो बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती रहेगी। इस दुनिया से अब तुम्हारा जैसे कि कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन है किससे? हमारा कनेक्शन है नई दुनिया से, जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। सभी को हमको एम ऑब्जेक्ट बाबा ने दी है, तो उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर न हो, रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उनको बाप का परिचय देंगे, इनसे भी तो ऊंची तकदीर बनती है। फिर वो भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे, उनको समझाएंगे, ज्ञान देंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो वो भी बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। तो सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, सेंटर खोल सर्विस को बढ़ाएं। हाँ, ये ख्यालात चलने चाहिए ये रत्न सब तुम्हारे पास है, बहुत रत्न है बांटने के लिए। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना भी देते हैं, ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं और दैवी गुण धारण कराते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, पवित्र भी रहते हो, मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म न हो उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं कैसे पावन बनो, युक्तियां बतलाते रहते हैं, तो उसमें ही रमण करते रहना चाहिए। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है। अब चलो कहिए ना, सेंटर खोल के देते हैं, मकान देते हैं, धन भी देते हैं, लेकिन खुद नहीं आते, लेकिन फिर भी उनकी तकदीर कुछ तो बनेगी ना, क्योंकि इतने लोगों को जो प्राप्ति होती है उनका शेयर उनको तो मिलेगा ना, क्योंकि सेंटर खोल के दिया, उसके लिए धन लगाया। तो बाबा कहते हैं सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है, ऐसे ही दुनिया थोड़ी खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना चाहिए, उसके बाद फिर पुरानी दुनिया की को खत्म होना है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है, स्थापना होती ही है संगम पर। तो ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है और अब स्थापना हो रही है, बाबा कहते किसको पता नहीं है। तो ये भी समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश उसका अभी संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, तो सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं, उनको पता ही नहीं है तो क्या मत देंगे नई दुनिया की स्थापना की। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं, अकेले तो नहीं करेंगे, अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। अकेले बाबा चाहे तो सब कुछ क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की मदद क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ही तो तकदीर बनानी अपनी, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग तो उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, आकर के बस कैंची से रिबन काटेंगे बस। बड़े लोग आते हैं ना, उनको बुलाते हैं कि आके उद्घाटन करो, तो वो बस आएंगे और रिबन काटेंगे, या रिमोट कंट्रोल से ही बस वो पर्दा हटाते हैं कि भाई इसने इसको कैसे इसका मुहूर्त किया या इसकी स्थापना की बस। तो बाबा कहते हैं यही काम करेंगे, बाकी वो थोड़ी बैठ करके कुछ बनाएंगे। अब वो आकर के कैंची से बस रिबन काटेंगे, यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ वो बात नहीं है, हम लोग केवल रिबन नहीं काटेंगे नई दुनिया के लिए, इसमें तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण मददगार बनते हो। आकर कैंची, हाँ, तुम ब्राह्मण कुल भूषण मददगार बनते हो, सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल भूल गए, मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए, भूल गए ना, मूंझ गए है रास्ता, जैसे फॉग में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो पतित दुनिया को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है, तो बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है, सारी युक्तियां बताई ना बाबा ने, सब नई दुनिया की स्थापना करने के लिए युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, भल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम, हाँ कहते रहते हैं। अब राम भी निराकार को ही कहते हैं, हे राम। हाँ कौन से राम को याद करते हैं? निराकार को ही याद करते हैं। निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर के इस मूंझ से निकाला है। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, फॉगी फॉग है, कहीं गिर न जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, होता है ना, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं ना। अब ये तो है बेहद की बात, बहुत बड़े जंगल में आकर के पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है कि हम किस जंगल में पड़े थे। अभी तो जंगल से निकल आए हैं ना, कलयुगी जंगल से निकल आए हैं, पर हम पड़े तो थे ना इस कलयुगी जंगल में। ये भी अब पता पड़ा है, ये पुरानी दुनिया है, ये भी पता पड़ा है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, हम नहीं पुकारते, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा आया हुआ है रास्ता बताने। तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। सो भी सब नहीं एक समान जानते हैं, सो भी नंबरवार जो जानते हैं वो तो बहुत खुशी में रहते हैं। अगर कोई मूंझे हुए हैं, माना अभी तक पूरा रास्ता समझा नहीं है, तो बाबा कहते हैं जो जानते हैं रास्ता, वो आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, अभी तो धुन लगी हुई है, बड़े बड़े सेंटर खोलते रहते ना, तो बड़े बड़े सेंटर खोलो। बाबा के समय तो वो छोटे छोटे सेंटर थे, वो छोटे, क्योंकि विस्तार तो इतना हुआ नहीं था, तो इसीलिए बाबा तो पहले से ताकीद करते रहे हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। चित्र भी बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए ये मैप्स जरूरी है, ये चित्र है हमारे मैप्स, नक्शे होते हैं ना स्कूलों में, नक्शे रहते हैं, नक्शों से भी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो बच्चों के लिए ये मैप्स, ये नक्शे, चित्र जरूरी चाहिए, बताना चाहिए ये भी स्कूल है, यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स है, ये सब नक्शे हमारे चित्र। उन स्कूलों के नक्शों में तो होती है हद की बातें, उन वहां के नक्शों में क्या होगा, जो नक्शे लौकिक स्कूलों में दिखाएंगे वो तो हद की बातें ही होगी, वो दिखाते हद की बातें। अब ये है बेहद की बातें, सत्यु की भी बातें बताते वो थोड़ी बताते हैं, ये है बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और फिर लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है। कहाँ बैठे हैं हम? मनुष्य के से देवता बनने की ईश्वरीय पाठशाला में। तो लिखा भी हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये है रूहानी पाठशाला। पर सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखो बनाए हैं, यहाँ कितने कार्ड्स, बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे, कार्ड्स बाबा को भेजा होगा कि बाबा ये टाइटल डाले, ये होर्डिंग बनाए, ये बोर्ड बनाए, तो बाबा ने वो देखा, पर बाबा ने कहा कुछ अक्षर भूले हुए थे, तो बाबा ने कितनी बार कहा है कि प्रजा पिता अक्षर भी जरूर डालो, खाली ब्रह्मा कुमारीज नहीं, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ बाबा कहते हैं प्रजा पिता अक्षर भी जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, तो उस समय इतना नहीं डालते थे, अभी तो सब डालते हैं, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उनको भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाके उठाएं। कई ऐसे भाई बहने हैं, अभी धन है तो किसी किसी सेंटर में कमी है तो फिर सोचते हैं हम इस सेंटर को भी उठाएं। ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। ठंडे पड़ गए हैं सेंटर, वहां वृद्धि नहीं हो रही है, सेवा नहीं हो रही है, तो बाबा कहते हैं ये सब क्यों होता है, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है, इसीलिए वहां सेवा नहीं होती है। मुझे याद है एक बार एक विदेश की बहन आई थी, तो सेंटर तो उसने खोला था लेकिन वृद्धि नहीं हो रही थी, कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। तो बाबा को कहा, बाबा हमारे सेंटर पर कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब एक बाप दादा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि तुम वहीं बैठ करके सोचो वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, थोड़ा विस्तार करो, थोड़ा जाओ, थोड़ा आगे जाओ, दूसरे कोई स्थान पर जाओ जो थोड़ा दूर हो, क्योंकि उस समय तो इतने सेंटर्स भी नहीं थे, दूर जाओ और वहां जाके सेवा करो। तो सचमुच बाबा ने उनको कहा, और वो जैसे ही उसका थोड़ा दूर गई और वहां जाके एग्जीबिशन किया, विस्तार किया, तो देखो कितने निकल आए। फिर वहां भी सेंटर खुल गया, तो पहला सेंटर तो ठंडा ही था लेकिन दूसरा सेंटर खुल गया, तो ऐसे उसकी वृद्धि होती गई। तो खाली ऐसे बैठ जाने से थोड़ी सेंटर की वृद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो उनको भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर को जाके उठाएं, ठंडा पड़ गया है उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, बाबा कहते ये भी भूल जाते हैं, तो मुझे स्वदर्शन चक्र घुमाना है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, बाबा कहते भूल जाते हैं। माया बहुत ऑपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो, युद्ध के मैदान में तो दुश्मन तो वार करेगा ना, तो इसलिए माया से सतर्क रहना होता है सदा। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा ही मुड़ कर उल्टा फेर उल्टे तरफ ले न जाए। बाबा कहते बहुत ध्यान रखो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो, कहीं माया माथा मुड़ कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माथा मुड़ लेते ना, कईयों को सजा देनी होती है तो क्या करते हैं, उनके सिर के बाल ही काट देते हैं, माथा मुड़ लेते हैं, तो ये भी जैसे एक सजा है। तो माथा मुड़ कर उल्टे तरफ न ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, बाबा जानते हैं माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो। छोटों को तूफान नहीं लगते ऐसी बात नहीं है, उनको भी लगते हैं। छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हो, पहलवान को माया के तूफान हिला न सके। अब बाबा कहते जैसे जैसे और मजबूत होते जाएंगे फिर माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। अब वो अवस्था भी आने वाली है, अभी नहीं है, हाँ जो अवस्था हो और तूफान आए और न हिले, हिल जाते हैं कई बच्चे, परंतु तूफान भी आए तो भी हिले नहीं, अचल अडोल रहे, बाबा कहते वो अवस्था भी आने वाली है। तो बाप समझाते हैं बच्चे समय बहुत खराब है, बहुत बिगड़ी है हालत दुनिया की, समय बहुत खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है, इसलिए बाबा सबको यही कहते हैं रात को कहीं नहीं निकलो, रात को बहुत सवेरे, क्योंकि जिनको कुछ भी गलत उल्टा काम करना है वो तो या तो रात को करेंगे या तो सवेरे सवेरे करेंगे, तो बाबा कहते हैं तो इसलिए बाहर भी नहीं निकलना है। हालतें बिगड़ी हुई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है उस समय, फिर भी साकार बाबा के समय चलो नेपाल का भी राजा था, लेकिन देखो वो भी खत्म हो गया। राजाई तो सारी दुनिया से खत्म हो गई है, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। हो गया है ना, सारी दुनिया में प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जा रहा है। हम राजाई स्थापन कर रहे हैं और फिर साथ साथ जो पुरानी जो राजाई थोड़ी बहुत है भी, नाम के राजाई है भी, बाबा कहते हैं वो भी खत्म हो जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है, पंचायती राज्य लोगों को चुनते हैं, पंचायती राज्य डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोग ही अपने उनको चुनते हैं राजाओं को। तो पंचायती राज्य होता जाता है, जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। अब राजा का राज्य होता है तो इतनी लड़ाई कुछ होती नहीं है क्योंकि राजा उसको कंट्रोल कर लेता है, पर प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो जो जिसको बिठाया है उसको भी डर रहता है कि ये प्रजा ही हमको उतार न दे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है, जहां भी जाओ जिस भी देश की बात करो उसमें भी हंगामा तो है ही है, हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाप की याद में रहे, औरों को भी ये समझाना है। हाँ, बाबा की याद में रहकर औरों को समझाना है क्या, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, ये सबको समझाना है। देह अभिमान छोड़ो, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं। फिर बाबा बच्चों को भी कहते तुम्हारे में सब देही अभिमानी अभी तक नहीं बने, नहीं बन न, ऐसे नहीं कि सब देही अभिमानी बने हैं तुम्हारे में, नहीं बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को भी कराते हो, तो याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं, पुरुषार्थ यही करना है। मूल बात है बाप को याद करना। तो बच्चों को कितना समझाते हैं बाबा, नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती है, तो मूल बात है, हाँ मूल बात पहले बताए याद, फिर मूल बात है पवित्र रहना, दोनों ही मूल बात है, भी होली भी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है ना, याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है, किसमें विघ्न डालती है, बाबा को भूलना नहीं है पर माया इसमें ही विघ्न डाल भुला देती है। रात दिन यही तात रहे कि हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए, कैसी पक्की होनी चाहिए, जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े, अंत में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी तो होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी याद पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। तो प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए कि ये है सबसे ऊंचा, सबका बाप ऊंचे से ऊंचा भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता ये है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे? नहीं तो वही एक व्यक्ति को एक व्यक्ति समझाए तो उसको समझ में आएगा। अब इतनी भीड़ होती है तो कैसे एक व्यक्ति को समझा पाएगा? तो ऐसे एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे? परंतु पहले पहले तो बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, तो समझाना पड़ता है। भक्ति है अथा और ज्ञान तो है एक। तो बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं, पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई ये भी किसी को पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग तो नहीं कहा जाता है, बाप तो संगम युग पर गीता सुनाते हैं तो वो तो द्वापर में ले गए हैं। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग को कोई संगम युग तो नहीं कहा जाता है, युगे युगे तो बाप आते ही नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे पड़े हैं, सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, कैसे कैसे समझाया जाए? बाप को डायरेक्शन देना पड़ता है। बच्चे टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। उस समय टेप नई नई निकली थी तो कई बच्चों ने खरीद ले ली थी टेप, तो बाबा भेजते थे कई जगह, तो बाबा कहते टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम आपकी पूरी मुरली सुनते हैं टेप पर। तो फिर कहते हैं बाबा आपकी मुरली तो हम टेप पर सुनते हैं, दूर है बाबा से, तो क्यों ना हम डायरेक्ट भी जाकर के सुने? टेप तो हमको मिली और हम सुनते हैं घर बैठे या सेंटर पर, तो क्यों ना बाबा के पास डायरेक्ट जाकर के सुने? इसलिए सम्मुख आते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छे अच्छे भी कहते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, आते हैं प्रदर्शनी में, बहुत अच्छा आपने ओपिनियन भी लिख के जाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हो, तो अच्छा अच्छा भी कहते हैं। फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है, सब उड़ जाता है माया के वायुमंडल में। सिमरण नहीं करते हैं, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। अब जो आए और अच्छा अच्छा कहा, बहुत अच्छा ओपिनियन लिखा, हाँ उनको थोड़ा समझ में भी आया, परंतु फिर वो सब जाकर के भूल गया बाहर जाकर के, तो बाबा कहते पीठ करनी चाहिए, उनका टेलीफोन नंबर, उनका ईमेल, उनका ये सब लेना चाहिए ताकि फिर उनको याद करा सको। और जब हमारे बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनको निमंत्रण देते हैं, तो बाबा कहते फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं, इसलिए मधुबन का गायन है। बच्चे मधुबन में आते हैं, यहाँ कोई गोरख धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है गोरख धंधा, बस बाबा को याद करना है, इसलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे। बाबा के पास आते हो, बाबा से सुनते हो, तपस्या करते हो, फिर जहां जाएंगे वहां समझाएंगे। गीता का भगवान कौन है ये भी समझाते हो। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। बदल गए ना, भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे और अभी बाबा के बने ज्ञान समझ में आ गया तो बदल गए। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, खाली नाम सुना है ब्रह्मा कुमार कुमार, यहाँ पर वो है कौन? बाबा कहते हो क्या जाने, तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना। वो लोग कहते ना आप लोग ब्रह्मा कुमार हो ब्रह्मा कुमारी हो, तो उनको बाबा कहते समझाओ आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। तो इस समय ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, तो ब्रह्मा के तो सब संतान है ही ना, आदि पिता तो सबका ब्रह्मा ही है, तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल भी तो जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, पहले जो चार वर्ण दिखाते हैं भक्ति मार्ग में या समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देवता तो उसमें दिखाते नहीं, विराट रूप में फिर देवता दिखाते हैं ब्राह्मण नहीं दिखाते। तो जो ब्राह्मण है जो जो धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा करे, वैश्य वो है जो पेट की रक्षा करे, हाँ धंधा करे वैश्य, और फिर शूद्र वो है जो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय की सेवा करे, उनको शूद्र कहा है। तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण क्या करते थे उस समय, ब्राह्मण बनने के बाद हाँ तो संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। अभी बाबा कहते हैं आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, पता चल जाता था ये लौकिक में ब्राह्मण है क्योंकि वो चोटी रखते थे। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से फिर चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे। हर ब्राह्मण को जनेऊ भी पहनना पड़ता था क्योंकि जनेऊ जैसे पहना तो द्विज हो गया, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म, एक ही जीवन में दो जन्म, वो जनेऊ पहना तो जैसे दूसरा जन्म भी हो गया, तो जनेऊ भी डालते थे। अब तो वो निशानियां भी चली गई, लौकिक ब्राह्मण भले होंगे लेकिन वो निशानियां, आजकल कौन चोटी रखता है, तो वो निशानियां भी चली गई है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं, सच्चे ब्राह्मण जो होंगे वही फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं, तो अपनी जांच रखनी है कोई भी आसुरी गुण न हो। वापस बाबा उसी बात पर आते हैं, कोई भी आसुरी गुण न हो, लूण पानी भी नहीं बनना है, लड़ना झगड़ना माना लूण पानी होता है ना, लूण पानी भी नहीं बनना है, ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है, यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं, यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा, ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है यज्ञ का, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तो तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, अब जो समर्पित है वो तो यज्ञ से ही लेते हैं, बाबा के घर से ही लेते हैं, तो तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, बाकी भले परिवार में रहते हैं तो भी यही समझते हैं ना कि हम तो ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी होते हैं तो फिर लेन देन तो होती है, लेकिन बीच में बाबा को रखते हैं कि वो बाबा को देते हैं, हम बाबा से लेते हैं, तो फिर बाबा की याद रहती है। तो तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा, मेरी मम्मी ने मेरे को शॉल दी, मेरे डैडी ने मुझे स्वेटर दिया, वो पहना तो पिताजी याद आएगा, माँ याद आएगी, सब याद आते ना, पर ये बाबा ने दिया ये अंदर में सोचा तो जरूर बाबा ही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं और कोई से लेकर पहनेंगे तो याद आता रहेगा, इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, अब तो वापिस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले, जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं, उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरा, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। क्या जांच करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, ये अपना पोता मिल देखना है। वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य, अब क्या होता है सूक्ष्म आलस्य वो बाबा ने बताया। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। अगर पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये आलस्य की निशानी है। क्यों थक जाते हैं पुरुषार्थ करते, आलस्य है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। अंदर में कुछ निराशा है, अंदर में कुछ मूंझ है, तो जैसे पुरुषार्थ में भी आलस्य आ जाता है। तो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो उन्हें ही आलस्य आता है। वो सोचते हैं, अब आलस्य आता है तो क्या मन में सोचते हैं, वो सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है मेरे से, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, ऐसे सोचते हैं। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब ऐसे अगर सोचते हैं ना, ये है सूक्ष्म आलस्य। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए क्या करो, सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑल राउंडर बनो। हाँ, सुस्त नहीं बनना है, ऑल राउंडर बनना है, अलर्ट बनना है, सावधान भी रहना है और एवर रेडी भी रहना है, हर वक्त तैयार। स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ के अंतर्गत आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ, तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब कल तो ज्ञान सरोवर में बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत किया, उनकी रिट्रीट शुरू हो रही है ना बड़ा, उनकी रिट्रीट शुरू हो रही है, और युवा है उनकी भी रिट्रीट आज से शुरू हो रही है। तो आज तो कई युवक यहाँ आएंगे, अभी पांडव भवन में आएंगे 9:30 बजे, और यहाँ थोड़ा चार धाम की यात्रा करेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो वो थोड़ा आप सभी ध्यान रखेंगे, वो युवक आएंगे यहाँ 70-80, 60-70 हैं, तो वो आएंगे खास युवाओं के लिए, विशेष रिट्रीट रखी है उनके लिए, तो वो यहाँ आएंगे सुबह और तो चारों ओर जाएंगे और फिर वापस तो जाएंगे वो। कल आपने ये भी तो समाचार सुना होगा कि हमारे अति स्नेही प्यारे सदा एक नामी इकोनॉमी को प्रैक्टिकल सैंपल सिंप्लिसिटी से बाप समान उद्धार मूर्त देवी परिवार के लाडले सोमेश भाई जी, सब उनको जानते हैं, सोमेश भाई जी जो मधुबन बेहद यज्ञ के चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने 1986 में कर्नाटक के दांडेली सेवा केंद्र से ज्ञान प्राप्त किया, 1986 में ज्ञान प्राप्त किया और 92 से आप मधुबन बेहद यज्ञ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अपने भ्राता रमेश भाई जी, दादा विश्व रतन के साथ अथक होकर के अकाउंट संभालने की सेवाएं की। आप रमेश भाई जी, दादा विश्व रतन और दादियों के अति स्नेही और प्यारे रहे। अपने शांत और सौम्य स्वभाव से अनेकों को बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में लगे रहे। कुछ साल से आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अकाउंट सेवाएं भी करते थे। कुछ महीनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो कल रात को अपने 72 साल की आयु में अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद में चले गए। रात को 9 बजे के लगभग उन्होंने देह त्याग किया हॉस्पिटल में। सोमेश भाई जी का अंतिम संस्कार विधि कल शनिवार 27 तारीख को सवेरे माउंट आबू में किया जाएगा। उनके पार्थिव देह को यहाँ कल ले आएंगे और यहाँ चार धाम की यात्रा करा के फिर ले जाएंगे। ऐसी अथक सेवाधारी सदा शांत और सौम्य सिंप्लिसिटी के उदाहरण मूर्त श्रेष्ठ आत्मा को हम सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे सब, चार धाम की यात्रा करने, देखा होगा, मिले भी होंगे, सबसे दृष्टि ली, बहुत कमजोर हो गए थे तो उनके तो सब अंग सब शिथिल होते ही जा रहे थे, खा पी नहीं सकते थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स तो थी। तो हमारे सामने भी आए, बहुत पावरफुल दृष्टि तो उनकी बहुत पावरफुल थी और दृष्टि लेते रहे और उनको भी जैसे दुआएं दी, बस बाबा को याद करो, एक बाबा दूसरा न कोई। और उसने हामी भी भरी, वो भी जानता था कि अभी मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, तो अब हम सब उस आत्मा को अपना योगदान देंगे। ओम शांति।